کسی کو کچھ پوچھنا کرنا ہو؟ ہاں جی ہاں
چندراوت بھائی، انہوں نے جھوٹ واڑا کا کیا ارتھ بتا دیا؟ اچھا سچ کون بولتا ہے اس دنیا میں؟ ساری دنیا جھوٹ واڑا ہی تو ہو گئی پھر.
ہاں جی، ایک کیسٹ میں کہا کہ جب بھگوان کا پورا سنسکار انت میں کڑا 100% کڑا ہو جاتا ہے تو شریر
کڑا نہیں ختم ہو جاتا ہے.
اچھا، کیا برہما بابا کا بھی کوئی ایسا سنسکار رہ گیا تھا جو انہیں شریر چھوڑنا پڑا؟
سنسکار رہ جاتا ہے تب شریر چھوڑنا پڑتا ہے. یہ بتایا کہ بھکتی مارگ کے سنسکار رہ جائیں گے تو شریر چھوڑنا پڑے گا. یہ بھی بھکتی مارگ کا سنسکار ہے کہ مکھ سے کہتے ہیں لیکن اندر سے سمجھتے نہیں ہیں. مکھ سے کہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں؟ وناش جوالا اس رودر گیانی کی کنڈ سے پرجولت ہوئی، 10 ورش میں پرانی دنیا کا وناش ہو جائے گا. تو کیا اس کے ارتھ کو سمجھا انہوں نے کہ صرف کہا ہی، مکھ سے بولا بولا لیکن سمجھا نہیں. بھکت لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ مکھ سے کہتے ہیں لیکن ارتھ نہیں سمجھتے. وہ بھی بھکتی مارگ.
بابا، سچی دیویاں تبھی بنتی ہیں جیسے لکشمی، درگا، سرسوتی، جگدمبا اپن کہتے ہیں. تو یہ دنیا میں کسی کے تن میں آتی اور کہتے ہیں کہ یہ تو درگا ہے، یہ گایتری ہے، تو یہ انیکو دیویوں کیا نام جو لیتے ہیں اور وہ پوچھ کرتے ہیں، وہ کچھ کسی کا بھلا کرتے ہیں، تو یہ دیویاں کون اور وہ دیویاں کون ہیں؟
بھلا ہی کرتے ہیں کہ برا بھی کرتے ہیں؟
کسی کا برا ہوتا ہوگا لیکن اپن تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھلا ہی کرتے ہیں.
آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ اچھا، جو آپ کو سناتے ہیں کہ یہ دیویاں ہیں وہ منشی ہیں یا بھگوان ہیں؟
وہ اشریری ہیں، کسی کے
نہیں نہیں نہیں، جو کسی کے تن میں پرویش ہو کر کے سناتے ہیں وہ سنانے والی آتما ہے بھگوان ہے یا منشی آتما ہے؟ منشی آتما ہے نا،
وہ دیوی کا نام لیتے ہیں نا.
جب یہ دنیا جھوٹ کھنڈ ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ سوکشم شریر وہی آتما دھارن کرتی ہے جنہوں نے بہت پاپ کیے ہو. کیا سوکشم شریر دھارن کرنے والی آتمائیں جن کے پاپوں کا بوجھا بہت بڑھ جاتا ہے، زیادہ پاپ نہ بنے اس لیے ان کو تھوڑے سمے کے لیے سوکشم شریر ملتا ہے.
تو کسی کا بھلا بھی تو کرتی ہیں نا.
سورگ تو نہیں بنا دیتی، تو اصلی بھلا کرنا کیا ہے؟ یہ دھوکا دینا ہوا کہ ہم دیوی ہیں. ارے دیوی دیوتائیں، آپ نے اتنی پڑھائی پڑھی، دواپر کلیوگ میں ہوتے ہیں کیا؟ کہاں ہوتے ہیں دیوی دیوتائیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ کون سے یوگ میں ہوتے ہیں؟ ستیوگ تریتا میں. تو آپ ان کی بات کیسے مان لیتے ہیں اتنی پڑھائی پڑھنے کے بعد کہ وہ دیوی دیوی ہیں، دیوتائیں ہوتے ہیں؟ آج کل برہما کمار کماریاں بھی ایسے ہیں جو تانتر کو آدھار لے کر کے بیٹھے ہیں، بھوت پریت پرویش کرتے ہیں، وہ بھوت پریت جھوٹ بولتے ہیں. میں جگدمبا ہوں، میں مہاکالی ہوں، میں چنڈکا ہوں، میں بھیرو ہوں. جھوٹ بولنے والوں کی دنیا میں کمی ہے کیا؟
بابا میں بھکتی مارگ میں بھکتی کرتی تھی، تو جب ورت کرتی تھی نیچے سوتی تھی، اوپر سے کوئی وائٹ کپڑے میں لیڈیز آتی تھی، میرے جیسی شکل تھی، اور میرے کو آ کے 3 بجے اٹھاتی تھی. میں سب سے پوچھا پر مجھے کسی نے بتایا نہیں، ابھی تک اٹھاتی ہوں. اب تو خیر آپ کے پاس.
سفید وستداری کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جو وہ تو دوسرے طرح کے بھی کپڑے پہنتے ہیں نا، لیکن جو خاص کر کے سفید وستروں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے وہ کون سی دیوی کہی جاتی ہے؟ सरस्वती कही जाती, तो आपकी बुद्धि में अभी तक आया क्यों नहीं है? कि मातेश्वरी सरस्वती नहीं हमको उठाने की कोशिश की।
बाबा शंकर जी को पांच मुख क्यों बताया
जी? शंकर को पांच मुख नहीं दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा को पांच मुख दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं ब्रह्मा को ही उन्होंने शंकर समझ लिया है। क्या पंचानन ब्रह्मा को कहा जाता है? क्या पंचानन माना ब्रह्मा, पांच मुख वाला। ये पांच मुख कौन से? दो यज्ञ के आदि में जो माता पिता थे, जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, मुरली में बोला है, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। कौन समझते थे? मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। वो भी गुम हो गए। तो दो तो यज्ञ के आदि वाले, और जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो दो यज्ञ के अंत वाले। बड़ी माँ यह ब्रह्मा, वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। अगर जगदम्बा है ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला, फिर तो उसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा होती है क्या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की? नहीं। फिर मुरली में क्यों बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है? इसलिए बोला कि ब्रह्मा की सोल ही शरीर छोड़ने के बाद कोई नारी चोले में प्रवेश करती है और जगदम्बा का पार्ट बजाती है, और जब जगदम्बा ही तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली का पार्ट बजाती है।
हाँ? 2001 में एक पॉइंट था कि एक ही ब्रह्मा में आते हैं, लेकिन यहाँ तो अब पता है पांच चार तन लेते हैं, तो वो एक ही ब्रह्मा है।
जिस एक में आते हैं वो भगवान बाप के रूप में आते हैं, औरों में आते हैं वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष संसार में नहीं होते। एक मुकर्रर रथ में आता हूँ और बाकी टेम्परेरी रथ हैं। जो टेम्परेरी रथ हैं वो भगवान नहीं कहे जाते, जो मुकर्रर रथ है उसके द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और
घर में रोज मुरली सुनते हैं तो रेगुलर स्टूडेंट हो ना, गीता पाठशाला है तो दूर दूर है।
जिनके लिए दूर है उनके लिए भी बताया कि जिनके लिए दूर है वो भी पंक्चुअल रेगुलर स्टूडेंट हो सकते हैं। कब? चलो गीता पाठशाला कोई दूर है तो महीने भर में तो एक बार आ सकता है। महीने भर में जो एक क्लास करेगा वो पंक्चुअल तो कर सकता है। तो पंक्चुअल भी है रेगुलर भी है, भले घर में जाकर के अपना मुरली सुनता रहे। थोड़ी दूर में है तो सप्ताह एक बार आ सकता है, पंक्चुअल रह सकता है, रेगुलर रह सकता है। नजदीकी है, मोहल्ले में एक ही गली में है तो रोज क्लास कर सकता है, वहाँ भी पंक्चुअल रेगुलर रह सकता है। हाँ जी
बाबा, जैसे अलग अलग साइन होते हैं, जैसे कभी इंद्री खाते हो, कभी महावीर नगर होगी तो वो भी रेगुलर कहेंगे।
क्या हुआ बाबा? तो कहते हैं कहीं भी गीता पाठशाला में चल, कहीं से भी सेंटर में जाओ, किसी को रोकना नहीं चाहिए कि तुम उस सेंटर में क्यों जाते हो, हमारे में क्यों नहीं आते, उस गीता पाठशाला में क्यों जाते हो, हमारे में क्यों नहीं आते। सब हैं किसके स्कूल? सब पाठशालाएं भगवान की है ना। तो किसी को कहना कि तुमने वहां साइन क्यों किए, यहाँ क्या, यहाँ भी साइन करो, नहीं।
वाइब्रेशन बनता है ऐसे, लेकिन मजदूरी को करना पड़ता है।
करना पड़ता है, मजबूरी गाएगी। हाँ जी, इनकी घूमने फिरने की आदत है, वो इधर उधर घूमते रहेंगे।
योग सही तरीके से कैसे
योग मत करो, भूल जाओ। क्या? जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो माँ बच्चे से पूछते है, बच्चे मैं तेरे को सही तरीके से कैसे याद करूँ? बच्चे बाप को याद करते हैं बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो बाप से पूछते हैं, हे बाप मैं तुम्हें सही तरीके से कैसे याद करूं?
और जब निर्विकार निर्विचार स्टेज पे बोल रहे हैं,
कोई भी स्टेज हो जिसको याद करेंगे वैसी स्टेज हमारी भी बनेगी। डकैत को याद करेंगे तो हमारे अंदर डकैती के संस्कार आ जाएंगे, साहूकार को याद करेंगे तो हमारे अंदर साहूकारी के संस्कार आ जाएंगे। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव ज्योति बिंदु बाप को याद करेंगे तो हमारे अंदर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी पने के संस्कार आ जाएंगे। लेकिन पहचान के पक्का निश्चय बुद्धि पूर्वक पहचान कर जब हम याद करेंगे तो वो याद आएगा सही तरीके से, और वो भी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे तो मीठा भी नहीं होगा। कहते हैं जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की ताकत जितनी ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे मन जरूर वहां जावेगा। दुनिया में भी कोई आदमी होता है, तन की सारी शक्ति जहां कहीं लगाएगा वहां उसका मन वैश्य में लगाता है। मान लो तन की सारी ताकत वैश्य में लगाई, टीबी की बीमारी हो गई, किसको याद करता रहेगा? वैश्य को याद करते रहे, वहां बुद्धि जरूर जाएगी। ऐसे ही धन है, धन की ताकत जहां कहीं लगेगी। किसी आदमी के पास करोड़ों रुपया है और उसने कारखाने खोल दिए, बुद्धि कहां जाएगी? कारखानों में जाएगी। अब यहां करोड़ों अरबों की बात नहीं है, यहां किसी के पास 100-200 रुपए हैं और उसने सारे 100-200 रुपए अपने जो भी जीवन भर में कमाया जमा किया वो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया तो कहां बुद्धि जावेगी? बाबा में जाएगी। तो जहां धन होगा वहां मन होगा, जहां तन होगा वहां मन होगा, ये नियम है। इसमें पूछने की बात नहीं है, जिससे प्यार होता है वहां अपना तन और धन सबको ही अर्पण करता है और वो याद आता है।
बाबा महाकाली को मांसाहारी क्यों बताया? जब वो माँ है तो वो मांसाहारी कैसे बताया? मुरली में कभी ऐसा है?
एक होती है हिंसक देवी और एक होती है अहिंसक देवी। दुनिया में जितने भी असुर हैं वो हिंसक हैं या अहिंसक हैं?
है? दुनिया वाले तो हिंसक ही।
दुनिया में जितने भी असुर हैं राक्षस हैं वो सब हिंसक हैं, बाहुबल वाले। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो ये जो हिंसक हैं इनको नष्ट करने के लिए कौन चाहिए? हिंसक शक्ति चाहिए।
तो वो मांस और खून पिएगी
क्या?
एक होता है हद का खाना, हद का भोजन, हद की खुराक, और एक होती है बेहद की खुराक। हद की खुराक बेहद की खुराक में क्या अंतर है? हद की खुराक ये तन खाता है, तन पचाता है, और बेहद की खुराक बुद्धि खाती है और बुद्धि पचाती है। मन बुद्धि आत्मा से जो देहभान की याद की जाती है, देहभान भोगा जाता है, वो है मांसाहारी स्टेज। क्या ये खुराक है? योगी लोग भी खुराक खाते हैं। कौन सी खुराक खाते हैं? भगवान के याद की खुराक, वो उनकी बेहद की खुराक है। और योगियों में भी जो आधे योगी हैं आधे भोगी है, वो दोनों प्रकार की खुराक खाते हैं। तो देहवान जो भोगा जाता है, देहवान का सुख भोगा जाता है, वो कौन सी खुराक है? मांसाहारी खुराक है। बाकी ऐसे नहीं है
वो मांस भक्षण करे ऐसा तो नहीं है ना?
अरे वो तो मांस भक्षण करने से भी खराब है। जो मिलिट्री के वॉरियर्स होते हैं उनको कैंटीन में खाना खिलाया जाता है। बाबा ने मुरली में बोला, तुम कैंटीन में खाना खाते हो, मिलिट्री मैन हो, तुम्हें खाना पड़ता है, तुम युद्ध भूमि में जाते हो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कभी, तो घोड़े को भून करके काट करके खाना पड़ेगा या दिया जाएगा, तो जिंदगी बचाने के लिए खाना पड़े ना, तो क्या करो? क्या बताया बाबा की याद में खा जाओ। तो ये कोई खास बात नहीं हुई, ये तो अपनी याद की ताकत की बात है। किसी में इतनी याद की ताकत है कि मछली भी खा जाए तो पचा जाएगा याद में, उसे लगन नहीं है मछली की लेकिन पचा जाएगा। और कोई ऐसे हैं थोड़ा सा संग करंग लगता है और उनकी हालत खराब हो जाती है।
सूर्यवंशी में हर धर्म की विद्रूप आत्माएं
है? नहीं नहीं, सूर्यवंशी में जो सूर्यवंशी मणके होते हैं वो लंबे समय तक सूर्यवंश में रहते हैं और आखिरी जन्मों में जाकर कोई दूसरे धर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। माने माया किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे सूर्यवंशी हो और चाहे इस्लाम वंशी हो चाहे कोई भी वंशी हो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान तब कही जाएगी कि बाप कन्वर्ट कर लेता है सारी दुनिया को, तो माया भी सारी दुनिया को कन्वर्ट कर लेती है। तो जो अष्टदेव हैं, जो पक्के सूर्यवंशी हैं, जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी हैं, वो आखिरी जन्म में जाकर के माया के चंबे में आ जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वो उन धर्मों की बीज रूप आत्माएं एक जन्म में कन्वर्ट हो गए, प्रभाव में आ गए, प्रजा बन गए, तो उस धर्म की आत्मा हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे नहीं, वो तो स्लाइट कहीं छिलका चढ़ गया दूसरे धर्म का, संघ के रंग का, वो छिलका उतर जाते हैं।
इस्लाम धर्म की जो कन्वर्ट होता है वो सिख धर्म में, इस्लाम धर्म के पहले हो जाते हैं, सिख धर्म के बाद हो जाते हैं,
ठीक है?
ज्यादा सुख कौन सा भोगेगा?
किसकी बात कर, अष्टदेवों की बात कर रहे?
सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं,
सूर्यवंशियों की बात कर रहे? जो भी सूर्यवंशी आत्माएं हैं 4.5 लाख पक्के और 4.5 लाख थोड़े कच्चे। क्या ब्रह्मा सरस्वती आत्माएं जैसी होंगी वो भी तो सतयुग में सूर्यवंशी होंगी ना, तो वो 4.5 लाख और उनको जन्म देने वाले 4.5 लाख टोटल कितने हुए?
9 लाख।
जो भी 9 लाख आत्माएं हैं, 4.5 लाख आत्माएं हैं, वो ज्यादा समय सहयोगी बनकर के रहते हैं रामकृष्ण के और थोड़े समय के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो दूसरे वंश के हो गए।
बाबा एक एक जन्म जो कन्वर्ट होंगे एक जन्म, तो उसमें ज्यादा पतित कौन सा बनेगा, जैसे इस्लाम है या सिख मसीह?
आखिरी जन्म में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो, चाहे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो, प्रभावित हो, क्या अंतर पड़ता है? एक ही जन्म के लिए तो कन्वर्ट हुए, दो जन्म के लिए ही तो कन्वर्ट हुए, सभी जन्मों में 83 जन्मों में 84 जन्मों में तो कन्वर्ट नहीं कहे जाएंगे।
इस्लाम धर्म में शुरुआत के अंदर कोई,
शुरुआत में जो कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम धर्म में वो तो इस्लाम धर्म के ही पक्के हैं।
9 लाख में से नहीं होते
ना, वो नहीं होते हैं 9 लाख में, वो कैसे होंगे? वो लास्ट में जाके कन्वर्ट होने वाले हैं सूर्यवंशी। फिर सूर्यवंशी क्यों कहे जाए, अब पहले से ही डसर हो गए।
बाबा जब बेसिक में सेवा पर जाते थे कुछ बच्चे ऐसे थे वो कहते थे चलो चलो प्रजा बना, तो यानी मन में अगर ये भाव रहा कि चलो चलो प्रजा बनाए और अपने को राजा अभी ही समझ लिया तो वो सेवा क्या निष्फल रही ना, या फल होगा?
अगर उसके ऊपर जिसको ये बुद्धि में है कि प्रजा बनाए, तो जब बुद्धि में ही प्रजा बनाने की बात बैठी हुई है तो उनके ऊपर कंट्रोलिंग तो चलाएंगे ही,
अपने को राजा समझ लिया।
हाँ, तो जब उनके ऊपर कंट्रोल चलाएंगे तो जो यहाँ कंट्रोल में चलाएंगे प्यार से नहीं चलाएंगे वो वहाँ क्या बनेंगे?
नहीं नहीं, कंट्रोल में नहीं, जैसे
बनाएंगे ही, तो उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम इनके राजा हैं।
नहीं नहीं, प्रदर्शनी लगी है मंदिर में जैसे है, तो वो बाहर है भक्तगण, तो उनको जैसे संदेश दे रहे हैं तो जैसे कभी थोड़ी देर बैठ के भक्त नहीं आएंगे तो फिर उठ जाते थे, जब आते थे तो लोग कहते थे कि चलो चलो प्रजा बनो, तो ये मन में भाव आ गया ना कि प्रजा बनाने का।
प्रजा बनाने का भाव आया तो प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने का भाव नहीं आएगा,
तो मतलब वो सेवा तो फलदायी हुई।
हाँ तो फलदायी नहीं हुई, इसीलिए तो बताया कि बेशक में राजा नहीं बनते, क्या बनती है, सारी प्रजा बनी। राजाएं तो अभी निकल रहे हैं एडवांस में, अधूरा ज्ञान है तो जो प्राप्ति होगी वो कैसी होगी, अधूरी होगी। अभी पूरा ज्ञान है तो प्राप्ति भी पूरी होती, ईश्वरीय प्राप्ति है राजयोग से राजा बनाने की।
तो बेसिक वालों की सारी सेवा निश्वर है।
अच्छा, वो तो पहले भी जब हम बेसिक में आए थे तब प्रश्न करते थे, अरे इतने ऋषि मुनि हुए, इतनी इन्होंने तपस्या की जन्म जन्मांतर, वो सारी निष्फल हो गई। जैसे वहाँ प्रश्न का जवाब था वैसे यहाँ भी प्रश्न का जवाब
है। नारायण को
जो बीज रूप आत्माएं हैं वो जड़ों को जन्म देती है, जो जड़ें हैं वो डालियों को ताकत देती है, डालियां पत्तों को जन्म देती है, टहनियों को जन्म देती है, टहनियां पत्तों को जन्म देती है।
10 करोड़ आत्माएं जो डायरेक्ट बाप से पढ़ रही हैं,
डायरेक्ट 10 करोड़ नहीं पढ़ती हैं, डायरेक्ट आत्माएं 10 करोड़ नहीं पढ़ती हैं बाप से, 9 लाख भी डायरेक्ट नहीं पढ़ती हैं, एक ही के आदमी भले पढ़ी हो क्या, जो बाप से डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं वो राजकुल के होंगे या प्रजाकुल के होंगे, राजकुल के होंगे, और उनकी ये खासियत होगी कि इसी जन्म में बाप से प्राप्ति करेंगे कि अगले जन्म में करेंगे, इसी जन्म में प्राप्ति करेंगे, और अगर इसी जन्म में प्रजा भी बने तो भी ऐसी प्रजा बनेंगे जो यथा राजा तथा प्रजा, उनको ये अनुभूति नहीं होगी कि हम राजा नहीं है। जैसे राजा के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा भले जन्म ले तो वो भी क्या कहता है, ये महल माणिया हमारे हैं या किसी और के हैं, हमारे हैं, ये राज्य किसका है, ये कहता हमारे बाप का है, क्या कहेगा, हमारा राज्य है। तो ऐसे ही ये 4.5 लाख जितने भी होंगे वो ऐसे बाप के बच्चे होंगे जिनको ये अंदर में अनुभूति आएगी कि जैसे बाप का अधिकार है वैसे हमारा भी अधिकार है, हमारा राज्य है। प्रजा माना रचना, ये वसुधैव कुटुंबकम है, जिसकी रचना हो रही है, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। कुटुंब में कोई छोटा बच्चा होता है तो ये नहीं कहता है कि हमारा घर नहीं है, क्या कहता है, हमारा घर है।
माया इसी जन्म में सरेंडर हो गई मन बुद्धि से,
इसी जन्म का ही तो खेल
है,
सारा इस जन्म में सरेंडर हो या ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके सरेंडर हो, किसी में प्रवेश करेगी तो पता तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, पता तो चल जाएगा, तो उससे अंतर क्या पड़ता है।
बोली में तो आया कि 10 करोड़ देवी त्रेता के अंतर तक 10 करोड़ देवी देवता होंगे,
होंगे लेकिन डायरेक्ट बाप के बच्चे होंगे क्या,
नहीं, 33 करोड़ देवी देवता भी तो गए।
हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक उतरती रहती है, अभी भी देवात्माएं उतर रही है, जो जो देवात्माएं उतर रही है वो भारतवर्ष में अभी भी उनके सामूहिक परिवार देखे जा रहे हैं, पूरा परिवार उसका एक मुखिया होता है, 60-70 का भी परिवार होगा तो वो मुखिया ऐसे होगा अपने परिवार में जैसे राजा, कोई बात को टाल नहीं सकता, 10-15 बच्चे होंगे, उनकी 10-15 बहुएं होंगी, लेकिन एक चूल्हे पर रोटी बनेगी, है तो प्राय लोप है, पूरा लोप तो नहीं है सनातन धर्म, प्राय लोप है। तो अभी भी ऐसी आत्माएं उतर रही है, अंत तक हर धर्म की आत्माएं उतरती रहती है। तो त्रेता के अंत तक सिर्फ 10 करोड़ ही उतरेंगे। 10 करोड़ जो है वो देवता या सेमी देवता की लिस्ट में गाए जाएंगे।
ये बाबा भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट कब तक का है इसका सब?
जब तक आपकी शिष्टाचारी गवर्नमेंट तैयार नहीं होती।
मूर्ति वाली किताब में है कि 98 तक कलयुग की शूटिंग भी सब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जिन आत्माओं को 98 के बाद ही संदेश मिला है उनका शूटिंग में कोई पार्ट ही नहीं रहा।
ऐसे तो नहीं कहा गया कि 98 तक शूटिंग हो जाती है।
जो लिस्ट पूरी लिखी हुई है,
हाँ जो लिखी हुई है, आपने पूरी किताब पढ़ी नहीं ध्यान से, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा 30-33 साल लगते हैं स्थापना करने के, उनके द्वारा भी शूटिंग हुई देवतावर्ण की। ऐसे ही शंकर द्वारा कितना टाइम है उनका? उनका भी 30-33 साल है। वो 30-33 साल जो है वो कब पूरा होता है
उस हिसाब से? तो सन 2002 तक थे।
2002 कैसे? 76 से लेकर के और 30-33 जोड़ दीजिए तो कौन सा सन आता है?
नहीं तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जमाने में वो 14 साल जो भट्टी के वो भी जोड़े जाते हैं 33 साल में।
हाँ?
तो इधर शंकर जी जब आते हैं तो उनके 7 साल भी जोड़ दें तो उस हिसाब से तो 33 साल हो गए।
हाँ 33 साल हुए ना।
हाँ?
तो 33 साल कब पूरे हुए?
सन 2002 में हो
जाते। 2002 में हुए। और ये रुंग के वर्ष कहाँ जाएंगे?
तो उस हिसाब से भी वो 3500 प्रत्यक्षता के तो 6 में हो जाना।
2004 में पूरी हो जाती है रुंग वर्ष। 2004 में जब रुंग वर्ष पूरी होती है उसके बाद विष्णु का कार्यकाल शुरू होता है। क्या
हिसाब से भी 6 तो आ गया।
6 कैसे आ गया? अभी अभी जो 6 चल रहा है उसमें तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात नहीं दे दी है? जब नई दुनिया की सौगात दे दी है तो उसमें कोई युगल मणका होगा नहीं ऐसा जो उस नई दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो, परवरिश कर रहा हो, पालना कर रहा हो? होगा या नहीं होगा? चलो फाउंडेशन में होगा, जमीन के अंदर होगा, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन है तो संशय किस बात का है? और
बाबा चैतन्य गीता माता कृष्ण तौर से बाप ने माता का पाठ भजा, दादा ने कहा ध्यान जल दिया गया
है।
सुप्रीम तौर से बाप ने ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके ध्यान दिया गया, मुरली उन्होंने जो भी चलाई, तो चैतन्य गीता का टाइटल किनको मिलेगा?
ये क्योंकि आज में कौन थी ब्रह्मा बाबा को पढ़ाने वाली? जो ब्रह्मा बाबा को यज्ञ के आदि में पढ़ाने वाली थी वही शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेकर आती है, वही निमित्त बनती है, उसी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उसी के दिल के अंदर ब्रह्मा की छाप पड़ती है। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा की छाप थी गीता माता के दिल पर, और अंत में भी गीता माता के दिल पर किसकी छाप होती है? कृष्ण की छाप होती है। तो कृष्ण की गीता से नरक बनता है और शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। शिव की गीता 1 सेकंड में स्वर्ग की स्थापना करती है, ब्रह्मा को कितने टाइम में विष्णु बनाती है? 1 सेकंड में विष्णु बनाती है।
बाबा माउंट आबू के लिए ऐसे समाचार आए हैं कुछ कि इस महीने के बाद में कोई रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं होगी, न तो जमीन की होगी न मकान की होगी, आप बहुत पता नहीं गलत कर दी।
माउंट आबू के बारे में नहीं, वहाँ की जो टाउन एरिया है उसका जो एरिया है उसके लिए। माउंट आबू तो बहुत बड़ा है, चारों बहुत फैला हुआ है।
अच्छा जैसे गांव रूरल में नहीं होगा वो वहाँ?
हाँ जी हाँ जी, ग्रामीण एरिया के लिए नहीं,
सिटी एरिया के लिए।
हाँ जी सिटी एरिया है वहाँ के लिए।
तो क्योंकि बैक डेट में तो शायद हो जाना चाहिए, अगर कोई बाइक खरीदना चाहे तो।
400 BC में क्या क्या नहीं हो जाता है
बाबा? ये एक लेटर आया था गुजरात से, उसमें ये देखिए चित्र इस तरह से दिया है।
देख लिया है वैसे?
बाबा इसमें चित्र भी जो इसके अलंकार है उसके आधार पे गलत तरीके से दिया हुआ है।
इसमें वैष्णवी देवी को दिखाया गया है
कमल
ओरिजिनल को।
हाँ जी
कमल की तरफ।
हाँ जी
वो कीचड़ में रहती है क्या?
नहीं नहीं बाबा वो
जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उनको कीचड़ कहेंगे क्या? कीचड़ तो नहीं है इसलिए ये चित्र रंग है।
हाँ जी वही
क्या ऐसे ही ये सरस्वती यहाँ दी हुई है।
हाँ जी ये भी इन्होंने ये
सरस्वती जो है वो चक्र दिखा दिया गया है।
हाँ जी
ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा दिया गया है इन्होंने ज्ञान संघ फूंक दिया जैसे महाभारत युद्ध में दिखाते हैं ना ये लड़ाई शुरू हुई तो शंख फूंक दिया गया तो लड़ाई का बिगुल बजाने वाला कौन है? हैं?
नहीं वो
जगदम्बा है
वैष्णो देवी।
हाँ वो लड़ाई का बिगुल बजाएगी।
हाँ जी
जब निकलेगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी जोर शोर से। एक रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। जो राज्य के दो परकोटे होते हैं किले के एडवांस पार्टी में बाहरी परकोटा टूटा है किले का बाहरी परकोटा टूटा है लेकिन अंदर का परकोटा नहीं टूटा है। क्या अंदर का परकोटा माना सरेंडर्ड हैंड्स बेसिक नॉलेज वाले जब टूटना शुरू होंगे तो एक रानी मक्खी निकलेगी उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। तो अभी जो बाहर का परकोटा टूटा है तो इतना इतना संघर्ष हो रहा है ना लेकिन जब अंदर का टूटेगा तो संघर्ष क्या रूप धारण कर लेगा? बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा।
गुस्साएंगे बाबा इसका मतलब वो लोग
हैं
बहुत गुस्साएंगे अंदर से जब बाघ के आने लगेगी आत्मा
की मरता क्या न करता
फिर स्थूल हिंसा पे आ जाएंगे
हैं स्थूल हिंसा पे अभी नहीं आए हुए
तो जरा मालूम पड़ते तो पुलिस को बता
देते। पुलिस करना कोर्ट कचहरी करना ये हिंसा नहीं है। जब हम कहते हैं हमारा सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है धर्मराज आया हुआ है बड़े से बड़ा कोर्ट जो अटेंड करने वाला जज है बड़े से बड़ा वो आया हुआ है फिर तो ये हजामों को कोर्ट में जाने की क्या दरकार ले जाने की क्या दरकार?
बाबा कृष्ण की जन्म स्थली बताइए मुझे मथुरा ब्रज गोकुल लेकिन ब्रह्मा बाबा उर्फ कृष्ण की सोल जो थी उनका तो जन्म सिंध हैदराबाद कराची और यहाँ माउंट आबू में कर्म स्थली बता दी।
माना संसार के अंदर कृष्ण की सोल कौन है ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया क्या है? दुनिया ने कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म जान लिया क्या? नहीं जाना ना। तो ये जन्म तो बेहद का जन्म है कोई हद का जन्म थोड़े ही है ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। दुनिया ये जाने कि कृष्ण का आत्मा इस तरह संगमयुगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजा रही है उसकी यादगार वहाँ बनी हुई है यूपी में। चाहे मथुरा हो चाहे अयोध्या हो चाहे वाराणसी हो चाहे वाराणसी का शंकर भगवान हो अयोध्या का राम भगवान हो मथुरा का कृष्ण भगवान हो जब प्रत्यक्षता होगी तो गंगा निकलेगी तो गंगा सारे उत्तर भारतवासियों को जगाए देगी और प्रत्यक्षता हो जाएगी। मगध देश मुरली में बोला गया है रहते हैं मगध देश में, भगवान आते हैं, वो तो क्लैरिफिकेशन ही गलत कर देते हैं। मगध देश अर्थात सिंध हैदराबाद, सिंध हैदराबाद मगध देश नहीं है। जहाँ के लोग मगरमच्छ सदस्य हैं, उसको कहा जाता है मगध देश। मगरमच्छों की संख्या कौन सी नदी में ज्यादा होती है? गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? मगरमच्छों के ऊपर। तो ये गंगा और यमुना के बीच का जो प्रदेश है वो है मगध देश, जहाँ से भगवान प्रत्यक्ष होता है। भक्ति मार्ग में तीनों ही नगरी मगध देश में दिखाई दी। और
मम्मा जो है संदेशी में आती थी, वो पाठ उनका उसका सही था। यहाँ भी जैसे आई तो मम्मा जैसे आती थी, मम्मा शरीर छोड़ने के बाद जो है संदेशी में प्रवेश होकर के आती थी।
हाँ जी, हाँ जी,
तो वो पाठ सही था उनका। ऐसे ही बाबा को भी कभी बुलाते थे तो संदेशी में बाबा आए।
अभी नहीं बुलाते हैं? अभी नहीं बुला रहे हैं संदेशियों?
मम्मा को भी संदेश।
मम्मा आती थी तो मम्मा ने कोई वाणी चलाई? कोई वाणी छपी हुई है मम्मा की चलाई हुई? जो पाठ जहाँ जहाँ चलता है उसके लिए मुरली में क्या बोला है? कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, कोई कहते हैं मेरे में बाबा आया, कभी कोई कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। तो फिर जो मुकर्रर संदेशी मुकर्रर की हुई है शुरुआत से ही, जो गुलजार दादी को मुकर्रर किया हुआ है उसमें जो पार्ट चलता है वो उसी को मानना है, और बाकी दूसरों को बात ही नहीं उठानी, मानना ही नहीं। और
तो जो वहाँ भोग लगता है मोहिनी देवी जाती है संदेश वतन में, वो संदेश लेके आती है, जबकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा वहाँ आए ही हुए होते हैं गुलजार दादी के तन में। वो क्या सत्य है? वो वास्तव में वतन में जाती है संदेश?
प्रवेश होने की बात इन्होंने की, भोग भोग लगाने की बात नहीं। भोग तो कोई भी संदेशियाँ जाके लगाती है।
वो किसका संदेश लेके आती है? बाबा ने फिर पूरा संदेश सुनाया जाता है वहाँ पर।
जैसे स्वप्न देखते हैं, तो जो स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं ना, दुनियादारी की बातें। तो कोई पूछे तुमने क्या देखा, क्या प्रैक्टिकल बात है? नहीं है ना। ऐसे ही साक्षात्कार भी स्वप्न की मिसल है। स्वप्न होता है बंद आंखों का सोते सोते, और ये खुली आंखों भी देखा जाता है। अंदर की आंख जो सूक्ष्म स्टेज में जाती है वो साक्षात्कार करती है।
वो जाती थी परम धाम तो
जाते आते की बात नहीं है।
बाबा ने भोग स्वीकार,
जितने भी संदेश आते हैं उन संदेशों का अर्थ यहाँ एडवांस पार्टी में लगता है। सही सही अर्थ एडवांस पार्टी की ही सारी बातें सूक्ष्म वतन के रूप में संदेश में सुनाई जाती है। सूक्ष्म वतन अलग से कुछ नहीं होता। मुरली में बोला सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन होता है क्या? माने हम बच्चों की मन बुद्धि की जो सूक्ष्म स्टेज है वही सूक्ष्म वतन है। या शरीर छोड़ने वाली आत्माएं जो है हम बच्चों में प्रवेश करके जो पार्ट बजाती है सूक्ष्म स्टेज में, वो बुद्धि की स्टेज है, बाकी कोई अलग से सूक्ष्म वतन नहीं है।
बाबा उनको पितर भी बोलते हैं, वही होती है
क्या?
पितर बोलते हैं, वो कौन सी आत्मा है?
मर जाता है फिर आता है।
जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गए उन आत्माओं को बुलाते थे, तो सब क्या हुआ? वो फिर भक्ति मार्ग में उसको फॉलो करते जाते हैं कि हमारे पितर हैं। वास्तव में तो यहाँ की बात है,
लौकिक में होता है तो जो क्या?
आज आज
सचमुच में होती है ऐसी आत्मा?
वो सिर्फ साक्षात्कार होता है। बाबा ने बोला आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जाकर के गर्भ में प्रवेश कर लेती है, آئے گی کہاں سے؟
کوئی نہیں بھی کرتی ہے، سوکشم شریر بولتے ہیں،
وہ تو بھوت پریت ہوتے ہیں،
پتر نہیں ہوتے،
پتر بھی ہو سکتے ہیں، بھوت پریت پتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کسی کے باپ دادا نہیں ہو سکتے بھوت پریت؟
بولتے ہیں پتر بھائی، ہمارے پتر بن گئے کوئی، لوگ اتنا آج کل ہوتا ہے،
اب دنیا کیا بولتی ہے کیا نہیں بولتی،
اس کو مانے یا نہ مانے،
ان ٹن کیوں مانے، ہم بھوت پریتوں کو کیوں مانے؟ بھوت پریتوں کی پوجا کرنے والے بھوت پریت بنتے ہیں، وہ بھوت پریتوں کی زیادہ باتیں کرتے ہیں،
پتر اور بھوت پریت ایک ہی ہوتے ہیں، کہیں کہتے ہیں پتر کو
جلدی آؤ، چھوٹی بھٹی کرنے کے بعد مجھے بھی پانچ سات آدمی دیکھی تھی، عورتیں دیکھی ہیں، بہار میں کلچ دے کے گئی ہمارے گھر کے آگے،
ہاں تو اچھی آتمائیں تھی نا، مما بابا جیسی آتمائیں تھی نا، ان کو یہ بھی سوچ تو نہیں کہیں گے، انہوں نے آپ کو اسمرتی دلانے کی کوشش کی، آپ نہیں پہچان سکے، اور
پیدا ہوئے اور دیوتا،
ہاں جی ہاں
جی،
گیتی مانا کھنڈت، گیتا پوری کی پوری کھنڈت کی ہوئی ہے، تو گیتا چیتنیہ ہے یا جڑ پستک کی بات ہے؟ جو چیتنیہ گیتا ہے اس چیتنیہ گیتا کو کھنڈت کر دیا گیا، جب پیورٹی کھنڈت ہو جاتی ہے تب پھر وہ مہاکالی کے روپ میں پوجی جاتی ہے، چنڈکا دیوی نام دیا ہے، چنڈکا دیوی کے مندر میں مانس کا بھوگ لگایا جاتا ہے، مانساہاری دیوی کہی جاتی ہے، اور دے ابھیمان کا مانس کھاتی ہے، ایک جانور کو مارا، دوسرے جانور کو مارا، تیسرے جانور کو مارا اور ان کا مانس کھایا، مانے دے ابھیمان کا مانس کھایا، ایک ہے سچی گیتا اور ایک ہے جھوٹی گیتا، اس کے نام دے دیے ہیں شاکاہاری دیوی اور مانساہاری، سچی گیتا شاکاہاری، جھوٹی گیتا مانساہاری، اور
2008 میں شیخ کی پرتکشتا جس کو ہونے کی بات کہی گئی ہے، تو اس کے بعد اس سنسار کی جنسنکھیا ختم ہونا شروع ہو جائے گی،
ارے براہمنوں کی دنیا میں پہلے ہر کاری شروع ہوگا یا باہر کی دنیا میں شروع ہوگا؟ پہلے تو تیسری مورتی کو پہچاننے والے براہمن ہوں گے یا باہر کی دنیا کے لوگ ہوں گے؟ براہمن لوگ پہچانیں گے، اور نمبر وار پہچانیں گے، ایسے نہیں سارے کے سارے ایک دم پہچان لیں گے، جھاڑ کے چتر میں دو طرح کا وناش دکھایا، اوپر دونوں کونوں میں، ایک ہے مہاباری مہابھارت گرہ یدھ جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں لڑتے ہیں، یہ ہے بھینکر وناش، خون خار کرنے والا وناش، اور دوسرا ہوتا ہے ایٹم بموں کا وناش، جس کے لیے مرلی نے بولا پانچ سات روز کے اندر ساری دنیا خلاص ہو جائے گی، اس سے پہلے ایک ایک شہر پر بمبارڈمنٹ ہوتا رہے گا، شہر کے شہر برباد ہوتے رہیں گے، لوگ سمجھیں گے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور انت میں کیا ہوگا؟ انت میں جیسے دیوالی مناتے ہیں نا، تو بچے کہتے پہلے تھوڑے تھوڑے چھٹاتے رہتے ہیں، جب چھٹاتے چھٹاتے تھک جاتے ہیں تو سارے ہی میں آگ لگا دیتے ہیں، تو ایسے ہی ایٹمک انرجی ساری کی ساری کام آ جائے گی پانچ سات روز میں، اب جب اکٹھا وسفوٹ ہوگا تو پرتھوی ڈولے گی یا نہیں ڈولے گی؟ ساری پرتھوی ڈول جائے گی، ماؤنٹ آبو بھی نہیں رہے گا، چھوٹا چھوٹا وناش ہوگا، اس میں یہ گرینائٹ کے پتھر کا بنا ہوا گہرا پہاڑ استھریم بنا رہے گا، ساری دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی سو سو مار کی اٹالکائیں سب ٹوٹتی رہیں گی، اور ڈھیر کی ڈھیر آبادی विनाश के गाल में जाती रहेगी। माउंट आबू के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अंत में जो ब्रॉड विनाश होगा एटमिक एनर्जी का, उसमें सारी दुनिया काल के गाल में जाएगी, सिर्फ बैकुंठवासी बचेंगे।
वो जगह छोड़ देंगे, वो जगह छोड़ देंगे माउंट आबू की,
माउंट आबू की जगह तो पहले ही छोड़ देंगे। आखिर रुद्रमाला के मणके विजयमाला में अंत तक पिरोए जाएंगे या अशांति की दुनिया में ही बैठे रहेंगे? पिरोए जाएंगे। जब पिरोए जाएंगे तो विकारों के ऊपर विजय पहनेंगे तब पिरोए जाएंगे, या बिना विकारों के ऊपर विजय पाए विजयमाला में चले जाएंगे? विजय पावेंगे तो विजयमाला में पिरोए जाएंगे, विजयमाला में पिरोए जाएंगे तो विष्णु के राज्य में आ जाएंगे।
तो बाबा, पूरा विनाश होने से पहले माउंट आबू से बैकुंठ में ट्रांसफर हो जाएंगे?
आखिर रुद्रमाला जो है वो विजयमाला में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है? रुद्रमाला पहले बनती है, विजयमाला बाद में बनती है। विजयमाला की हेड भी बाद में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन रुद्रमाला के मणके फिर बाद में धीरे धीरे करके विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। जब सारे मणके ऐड हो जाएंगे तो तपस्या भूमि का कोई महत्व तो नहीं, मतलब नहीं, फिर तो तपस्या भूमि बदल करके शांति धाम ओरिजिनल बन जाएगा।
बाबा, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे साधन खत्म हो जाएंगे तो, या जब तक पूरा विनाश नहीं होगा पूरी तरह से, जैसे रोड वगैरह है या जो भी जिस तरह का भी साधन है वहाँ से वहाँ पहुँचने का, माना माउंट आबू से दिल्ली पहुँचने का जो साधन है, तो वो कैसे पहुँचेंगे वो लोग?
एक हेलीकॉप्टर अभी से खरीद के रख लो। आत्माओं से जो संयोग है, इनका दिल जहाँ से लगा हुआ है वो दिल एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, वो कितनी भी दूर हो वो वहाँ पहुँच ही जाएंगे।
मंगलवार
ही जाएंगे,
पहले खाली होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, इधर से जो स्टेज बनती जाएगी तो वहाँ पहुँचते जाएंगे। एक साथ साढ़े चार लाख थोड़ी,
ये किसने कहा? एक साथ
साढ़े चार लाख होगी,
जब मारकाट चल रही होगी तो कैसे?
मारकाट जब चल रही थी तो सिंध हैदराबाद से 400 साढ़े 400 कन्याएं कैसे उस मारकाट में से बच करके और कराची में पहुंच गई थी? पहुंच गई कि नहीं? और आज भी मौजूद है, तो फिर बचाने वाला नहीं रहेगा?
आरा में श्री कृष्ण का जन्म होता
है
आरा में, तो बाबा तो नारायण बन जाता है, तो फिर शिव सुप्रीम सोल तो 100 साल के लिए आता है बाद में, कहाँ 100 साल तो सत्य से पूरा होता है, बाबा नारायण बन जाता है, श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, तो फिर शिव बाबा की प्रेस तवर, शिव सुप्रीम सोल की प्रेस तवर बात।
ये आपने कैसे समझ लिया कि मनुष्य सृष्टि का बाप नारायण बन जाता है कृष्ण को जन्म देने के बाद? और रुको, नारायण बन जाने का मतलब आपने ये समझ लिया कि नारायण लक्ष्मी के साथ ही रहता है? ये कैसे आपने समझ लिया? वो जो साथ दिखाया गया है वो बुद्धियों का साथ है, वाइब्रेशन का साथ है, या प्रैक्टिकल में शरीर का साथ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को सामने देखते हुए दिखाया गया, और उनके बच्चे जो राधा कृष्ण है नीचे स्वर्ग में दिखाए गए हैं, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, माने उनका प्यार स्थूल है, स्थूल इंद्रियों से कनेक्टेड है, किनका? स्थूल दुनिया से कनेक्टेड है, और उनकी तो दुनिया ही बेहद की है। वो दुनिया जहाँ से राधा कृष्ण का जन्म होता है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की दुनिया, वो बेहद की दुनिया है, चढ़ती कला वाली, उतरती कला वाली नहीं होगी। आंखों से जो प्यार एक दूसरे से लेना शुरू करेंगे वो उतरती कला का प्यार होगा, कलाएं नीचे गिरने लगेंगी पहले ही जन्म से। और राधा कृष्ण को जन्म देने वाले जो होंगे वो उतरती कला से के प्यार से जन्म देंगे या वाइब्रेशन के प्यार से जन्म देंगे, उनका वाइब्रेशन का प्यार होगा।
तो माँ बाप की कंचन काय बनती है तब तो बच्चे जन्म देते हैं, माँ बाप की पहले कंचन काय बनती है
हाँ?
फिर बच्चे जन्म दिया
तो क्या हुआ?
तो कंचन काय बन गई माना पवित्र हो गए
हाँ?
तो फिर शिव सुप्रीम सोल की प्रेस्ता वाली बात
हाँ, तो
शिव बाबा फिर रहेंगे कि
18 साल कम हो गए क्या संगम
में? नहीं, जो विश्व महाराजन है वो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेगा तब विश्व महाराजन कहा जाएगा, या सिर्फ राधा कृष्ण जहाँ जन्म लेंगे 10-15-20 होंगे जो भी हो या अष्टदेव हो उनके बीच में रहेगा तो उसको विश्व महाराजन कहा जाएगा, है? सारे विश्व का महाराजन तब कहा जाएगा जब सारा विश्व उसको मान्यता दे। दुनिया में और जितने भी महत्वाकांक्षी हुए हैं विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले, उन्होंने हिंसक युद्ध किया फिर भी हिंसक युद्ध करने के रिजल्ट में वो विश्व पर बादशाही नहीं कर सके। और ये है भगवान के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग, जिस राजयोग से सारे विश्व के ऊपर तुम राज्य करते हो। तो सतयुग के नारायण और संगम युग के नारायण में अंतर किस बात का होगा? वो सतयुग के नारायण होंगे और वो सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिल के ऊपर राज्य करने वाले होंगे। सारी दुनिया उस गॉड फादर को साकार में अंत समय में मान लेगी, तो मौजूद होंगे तभी तो मानेगी। इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है तो मानेगी कैसे? इसलिए ये शूटिंग चलती रहेगी माउंट आबू में, क्या तप कर राज कर नर का। माउंट आबू में इकट्ठे होते जाएंगे तो तपस्या करेंगे, क्या तपस्या करते करते फिर इच्छा जागृत होगी राजा ही करें, बाहर की दुनिया में पहुंचेंगे राजा ही करेंगे तो क्या होगा? हैं प्रभुता पाए का ही मदना ही, अहंकार चढ़ जाता है, जब अहंकार चढ़ता है तो पाप कर्म करने लग पड़ते हैं, पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना बोझा चढ़ता है, जब ज्यादा बोझा चढ़ जाता है तो फिर बैराग आता है, फिर भागते हैं तपस्या भूमि में। ये बार बार आना बार बार जाना चलता रहेगा,
इनको ज्यादा तपस्या करना पड़ेगी जो पाप कर्म ज्यादा कर रहे हैं।
तो आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे ये किसके लिए बोला?
तो 2.25 लाख होंगे ना माउंट आबू में
जी
शरीर से?
नहीं,
जो वैष्णव कुल का है वो माउंट आबू में होगा,
वैष्णव कुल के सारे ही इकट्ठे हो जाएंगे जाके विष्णु के पास, सारे इकट्ठे एकदम हो जाएंगे।
माउंट आबू में रहेंगे बाकी।
अच्छा, यहाँ जो एडवांस पार्टी अभी चल रही है तो वहाँ सारे इकट्ठे एक साथ हो गए क्या? धीरे धीरे हुए ना, तो ऐसे ही वहाँ भी होगा। जब तक उस बैकुंठ में नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका अप एंड डाउन चलता रहेगा।
बाबा 16,000 सतयुग के शुरू में साकार भी होंगे, सतयुग शुरू होगा वनवन से उसमें संख्या साकार भी होगी क्या? 9,16,108
साकार में नहीं होंगे?
नहीं, साकार
माने सतयुग की जो भी जनसंख्या त्रेता की होती है वो 10 करोड़ जनसंख्या साकार में नहीं होती,
वो तो होती है, लेकिन सतयुग के शुरू में 9,16,108
हाँ
ये पूरी साकार में संख्या होगी
नहीं होगी?
लेकिन इसमें 16,000 प्रिंस प्रिंसेस बोला है तो वो तो लास्ट तक हैं,
लास्ट तक प्रिंस प्रिंसेस का पद पाते हैं, पद पाएंगे, माना जो लास्ट प्रिंस बनेगा वो पहले जन्म से लेकर के लास्ट जन्म तक दास दास ही बनता रहेगा। आखिरी जन्म में 16108वां नंबर का प्रिंस या प्रिंसेस बन जाएगा।
तो मान लो आठ नारायण है,
हाँ जी
आठ नारायण प्रिंस है, तो ये क्या सत्यों की शुरुआत की संख्या में तो नहीं आएंगे? आएंगे
आठ नारायण जो है वो डायरेक्ट आते रहते हैं, उनके जन्म कम हो जाते हैं,
ऊपर से डायरेक्ट आएंगे। 16000 उसमें नहीं है,
16108 में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होंगे या दूसरे वंश के भी होंगे?
एक डिस्कशन में था जैसे शरीर छोड़ा है, जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो वो किसी को तो सूर्य की संख्या में होंगे।
जो अपोजिशन करने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं, वो बाद में आवेंगे या पहले आवेंगे? ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को गहराई तक समझा नहीं, तो एक जन्म कम हुआ ना, भले धारणा में ज्यादा थे, जो भी ज्ञान धारण किया पूरा धारण किया, उस धारणा के आधार पर वो सत्यु के आदि में आ गए, और जिन्होंने धारणा की ही नहीं, सिर्फ दिखावा दिखावा किया, तो वो अंत में आते हैं। हाँ जी
बाबा, वैष्णो पता है कि आठ में आएगी, पहचानेंगे नहीं?
वैष्णो देवी आठ में आएगी। वैष्णो देवी जो है वो विजयमाला की हेड होगी या सूर्यवंशियों की हेड होगी? विजयमाला में सब चंद्रवंशी होंगे या सूर्यवंशी भी होंगे? चंद्रवंशी होंगे, तो नीची स्टेज के हुए या सूर्यवंशियों की स्टेज के हुए? बाद में सूर्यवंशी बनेंगे या पहले सूर्यवंशी बनेंगे? जब राधा कृष्ण के साथ स्वयंवर के बाद ऐड हो जाएगी तभी तो सूर्यवंशी बनेगी, अष्टदेव में चंद्रवंशी नहीं आ सकते। देव है तो सूर्यवंशी होने चाहिए या दूसरे वंश के होने चाहिए? देव कौन से वंश के होते हैं? सूर्यवंशी होने चाहिए, तो वैष्णो देवी को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे।
पता है आठ में आएगी, तो
आठ में नहीं आएगी, आप कह रहे हैं बार बार आठ में आएगी, आठ में आएगी, सात आठ में भी नहीं आएगी। अष्ट देवों में सिर्फ सूर्यवंशी आते हैं,
सन
वो आएगी, जिनके लिए आएगी उनके लिए आएगी, सबके लिए आएगी क्या?
नंबर जिसको पता है वो भी पहचानेंगे।
मम्मी, जिनको पता होगा वही पहचानेंगे। हाँ आठ में क्यों? 2008 हाँ 2008 सन की बात, ठीक है ठीक
है।
टाइम हो गया 12:08
रुद्रमाला के हैं सारे।
हाँ अंत में सारे रुद्रमाला के कहे जाएंगे, जब ताजिया झुका देंगे अपने, जब झंडा नीचा कर देंगे, हर एक ग्रुप जो 12 के अलग अलग ग्रुप हैं वो सारे ही जब अपना झंडा झुका देंगे तो सूर्यवंशी कहे जाएंगे।
ऐसे थोड़ी जैसे चौवन ऐसे थोड़े चौवन विजयमाला चौवन तो डायरेक्ट
वो तो युगल मणके की बात है, चौवन जोड़े राइट साइड के, 54 जोड़े लेफ्ट साइड के, 108 जोड़े वो विजयमाला हुई। विजयमाला है युगलों की माला और रुद्रमाला है सिंगल की माला। रुद्रमाला सब आपस में भाई भाई हैं, विजयमाला भाई बहन युगल हैं।
बाबा ये जो राधा कृष्ण का जो स्वयंवर दिखाया गया है, जो बताते हैं कि होगा, तो बाबा सतयुग में तो ये होता ही नहीं है, और
जो
इस समय
शास्त्रों में गायन है स्वयंवर का, राम सीता का स्वयंवर हुआ, राधा कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं, जो भी स्वयंवर शास्त्रों में दिखाए गए वो कहाँ की यादगार
है? बाबा है तो संगम किया,
तो संगम में सतयुग में क्यों डाल रहे हैं फिर उसे?
बाबा यही है कि इसमें जो कहते हैं कि अभी जैसे जो लक्ष्मी है और जो नारायण है उनका भी वाइब्रेशन का वो है,
वाइब्रेशन का है
हाँ।
लेकिन क्या उनका शरीर का संयोग होता है?
नहीं,
बस संयोग, शरीर का संयोग ही नहीं होना है। स्वयंवर गाया हुआ है, स्वयंवर का मतलब उन्होंने उनको वर्ण कर लिया, संसार के सामने स्वीकार कर लिया। ये हमारे 21 जन्म के
संयोग
युगल मण का है। और